जब निरंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपका आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकारी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है, शरीर का आधार लिया, लेकिन किस लिए दिया? आप आत्मा ने निराकार से साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? आत्मा, ये पक्का है? तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाली स्थिति में सहज? तो बाबा क्या कह रहे हैं, किसने किसका आधार लिया? आत्मा ने शरीर का आधार लिया, आत्मा शरीर में प्रवेश किया, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया। हमारा ओरिजिनल स्वरूप आत्मा, ये सब निरंकारी बनने के लिए बाबा। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वह कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ध्यान ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आना। जो नीचे ले आने वाला है उसी का फायदा उठा के उसको साधन बनाना है ऊपर ले जाने। मन ही बंधन का कारण है, तो मन ही मुक्ति का भी कारण। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पार्ट सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने ये कहा, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की, कि जब भी मैं शब्द यूज करो, क्या करो?
ओरिजिनल
फॉरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है वह सहज है? ये सबसे मुश्किल यही है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा। अगर ये काम कर दिया कि जितनी बार मैं बोलो दिन में, सिर्फ यह युक्ति निरंकारी बनने का सहज साधन अपना कर देखो, यह देहभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देहकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं यह स्मृति में लाएंगे, तो यह मैं शब्द ही देहभान से भरे ले जाएगा। जो मैं नीचे लाने वाला है वही मैं ऊपर ले जाने वाला है। ठीक है ना? ठीक है। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे, ज्यादा बोलते नहीं है तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है, प्लान भी बनाते हो तो सोचते तो हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? अगर जितनी बार सोचते हो कि मैं ये करूंगी, तो हर मैं के साथ निराकारी स्थिति ओरिजिनल स्वरूप याद आए, तो क्या हो जाएगा? फिर कर्मातीत अवस्था तुरंत। निराकारी तो क्या बना देगी? बाबा कहते निराकारी, निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी, निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देहाभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। एक है देह का आधार लेना, एक है देह के अधीन हो जाना। परिष्ठा व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरंकारी आकारी परिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए हैं। तो बाबा बेहद की स्थितियों का वर्णन कर रहे, आकारी परिश्ता स्वरूप और निराकारी स्वरूप, उसमें स्थित होने के लिए ये है लक्ष्य। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण आने पड़ेंगे। और बाबा ने क्या कहा था यहाँ पर, उसका कारण क्या है? अहंकार, या ये बनने के लिए नेचुरल नेचर हो जाए, निराकारी भी और आकारी भी, उसके लिए मूल आधार है निरहंकारी बनना। निरहंकारी भी का विशेष एक शब्द कहा था देहाभिमान, उसके भी दो रूप, एक तो मोटे रूप का देहाभिमान जो अपनी और दूसरों की देह का आकर्षण, और सूक्ष्म में देहाभिमान कौन सा कहा था, बुद्धि विशेष, संस्कार विशेष, गुण विशेष, ये सब कुछ, उसमें भी अहंकार, उसका नशा और उसका रोग, कोई कला विशेष, बुद्धि कला संस्कार शक्ति विशेष, ये सब सूक्ष्म अहंकार। तो ये सब कैसा हो जाए, निरंकारी स्थिति नेचर और नेचुरल लक्षण हो जाए, नेचुरल या नेचर बन जाए। और यहाँ उसकी फिर बाबा ने विधि बताई कैसे बनेंगे, कौन किस में आया है, आत्मा शरीर में आई है या शरीर आत्मा में आया है। तो मैं आत्मा इस तन में आई, ये अभ्यास कि मैं आत्मा इस शरीर में आई हूं, मैं आत्मा अभी अभी इस शरीर में आई हूं, मैं आत्मा इसके पहले किसी और शरीर में थी, उसके पहले किसी और शरीर में थी, कभी स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, करते 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 मैं अभी अभी इस तन में आई हूं। ये अभ्यास, इस तन में आने का अभ्यास, आत्मा को देखना इस तन में आते हुए, यह अभ्यास। तो शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने, अब आत्मा ने लिया, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर, चिरस्थाई क्या है, आत्मा या शरीर, जिसने आधार लिया वो चिरस्थाई है आत्मा। तो ये पक्का है, तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है? तो ओरिजिनल मैं आत्मा। फिर बाबा ने क्या कहा, अहंकार आने का एक दरवाजा है, कौन सा, मैं। मैं कौन, मैं आत्मा या फलाना फलानी, औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे लाने वाला, मैं ही ऊपर जाने वाली सीढ़ी और मैं ही से नीचे उतरते हो, दोनों का आधार मैं ही। तो ये नेचुरल हो जाए, तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्मृति स्वरूप में आ गए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, अगर कहते नहीं हो तो सोचते तो हो, तो मैं तो रहता ही है ना, अगर कोई बोले ना तो भी मैं है, अगर किसी का मौन है तो भी अंदर तो चल ही रहा है मैं, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो ये अभ्यास केवल बोलने के लिए नहीं है, ये मनसा अभ्यास है,
कॉन्शियस,
ये आंतरिक अभ्यास है, ये जो मैं है, हमारी सारी खोज ही इस मैं की है। हमें दो खोज करनी, एक सत्य की खोज और एक मैं की खोज, मैं कौन, मैं कौन, और ये सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, ये दो हमारी खोजे है। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की, जब भी मैं शब्द यूज करो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है, ये मैं ही है जो अशांत हो रहा है और मैं ही है जो शांत है, ये मैं ही है जिसमें अहंकार आ रहा है और ये मैं ही है जो निरंकारी, ये मैं ही है, ये जो आत्मा है उसी में विकार और उसी में निर्विकार किया जाता है, ये आत्मा है जिसमें वासना और निर्वासना दोनों है, सब कुछ मैं ही हूं। इस मैं को ढूंढना, इस मैं के ओरिजिनल स्वरूप को ढूंढते ढूंढते ही जो कुछ निगेटिव है वो स्वतः ही विसर्जित हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ पड़ा है। अगर ये कर दिया तो सिर्फ यह युक्ति निरंकारी बनने का सहज साधन अपना कर देखो। यह देहभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मस्वरूप हूं, यह स्मृति में आएगा आएंगे तो यह मैं शब्द ही देहभान से परे ले जाने जाए। जो बंधन का कारण है वही मुक्ति का भी कारण है। बहुत ही सूक्ष्म बातें है ये सारी, ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे, बोलते नहीं तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना, तो इतनी बार का अभ्यास आत्मस्वरूप की स्मृति क्या बना देगी निराकारी। अशांत तो कौन हो रहा है और शांत तो कौन हो रहा है? और आत्मा का स्वरूप तो शांति है, फिर अशांति कहां से? यह अशांति है ही नहीं, क्या है ये? जैसे कोई एक सम्राट था कि उसको किसी बौद्ध भिक्षुक से वो मिला और कहा कि मैं, मेरा मन बहुत अशांत है, इसे शांत कैसे करूं? तो उसने कहा कल सुबह सुबह हमारे आश्रम में आ जाना, पर आते सबने अपनी अशांति जो है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है उसको जरूर साथ मिलाना। इतना बड़ा वो चीन का सम्राट, जितनी बड़ी उसकी प्रजा, फिर भी अशांत, उसको नींद नहीं आती, उसको भोजन ठीक नहीं लगता है। और वो कहता है साधु को, जब ये बताता है भिक्षु को, तो भिक्षु कहता है अपनी अशांति जिसने तुम्हें, जिस वजह से तुम परेशान हो उसको जरूर साथ में लेके आना। वो मन में सोचता है कि अशांति कोई वस्तु तो है नहीं कि जिसको मैं साथ में लेके जाऊं, इसका कोई आदान प्रदान थोड़ी होता है। वो कहता है तुम अपने अशांत मन लेके आना, तो मैं तुम्हारी अशांति लेके तुम्हें शांति दे दूंगा। ये कोई वस्तु थोड़ी है जिसके लेन देन की जा सके। फिर भी वो रात भर सोचता है, फिर भी वो जो भिक्षु होता है उसकी आंखों में उसे एक चमक दिखती है, उसके बोल में उसे एक प्रभाव दिखता है, उसको लगता है कि जरूर इसके पास इसका कोई हल है। वो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहुंच जाता है उसके आश्रम में। उसे देखते ही वो भिक्षु कहता है अपनी अशांति को साथ में लाए हो ना, तो फिर वो कहता है तो अशांति कोई वस्तु तो है नहीं कि जो मैं साथ में लेके आऊ, पर जरूर कुछ तो है कि जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है उसका अस्तित्व ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम एक काम करो, थोड़ी देर बैठो और ढूंढो अंदर कहाँ है अशांति। शांति को नहीं ढूंढने को कहा, अशांति को ढूंढ। तो आंखें बंद करके बैठ जाता है, ढूंढता है कहाँ है अशांति, देखते जाता है मन की एक एक परतों को, खुलते जाती है एक 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 उसके अंदर की, अंदर ही अंदर ढूंढता है कहाँ है ये अशांति। और जैसे जैसे जितना ज्यादा सोचता है वो उसको कहता है कि सोचो उसके बारे में, बहुत सोचो कि कहाँ है, कि जिससे भोजन अच्छा नहीं, जिसने परेशान कर रखा है, सारे सुख सुविधाओं के साधन है फिर भी अशांत हो, वो कहाँ है अशांति, उस अशांति को ढूंढते जाओ। वो सोचते जाता है, सोचते जाता है, जैसे जैसे सोचते जाता है और अशांति को ढूंढते जाता है, वो देखता है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो जैसे कि आत्मा और अस्थिर हो जाता है। वो जब भिक्षु आता है देखता तो एकदम जैसे कि वो मूर्ति जैसा बैठा हुआ, जैसे बुद्ध की तरह। वो उसको हिलाता है, क्या हुआ, मिले कि नहीं, मिले तो दो ताकि मैं शांत करूं। तो बोलता है ही नहीं, कहां ढूंढू पूरा ढूंढा मन, पर जितना ढूंढने का प्रयास किया मन और ही और शांत होता है, क्योंकि वो फिर प्रश्न है कि अभी वो था कौन, वो है क्या। क्योंकि जैसा मन वो ढूंढने गया ढूंढने गया ढूंढने गया, भले उनके पास आत्मा के ज्ञान है या ना है, पर आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप तो शांति है। चाहे कोई वैसी ऐसी व्यक्ति की जो आत्मा को अस्तित्व को ही नहीं मानता, बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता ये सब बात, परंतु जैसे ढूंढते गया विचारों को तो वो शांति होते गया। वो अभी ढूंढने लगा कहाँ है वो शांति जिसने, अभी तो मन स्वतः ही शांत हो गया, विचार शांत हो गए, वो संकल्प इतने स्थिर हो गए कि वो पूछता है दो अभी तो शांत करो, तो बोलते पहले ही शांत हो गया अभी कहां से दूं। सोचने की बात है ये है क्या, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे, तलवार लेकर जिससे लड़ रहे हैं, कि मुझे इस अशांति से मुक्त होना है। ये संकल्पों का ही खेल है। जैसे पहले तो ये जिससे हम अगर लड़ाई का भाव है तो वो संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि हम किसी को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते तुम्हारा युद्ध माया के साथ है। एक्चुअली ये वाक्य भी एक रीति से गलत है, परंतु दूसरे शब्द भी नहीं है फिर, शब्दार्थ और भावार्थ दो। क्योंकि हम अगर क्रिएट करते हैं किसी व्यक्ति को तो फिर वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, फिर हमारा और उसका संघर्ष है। पर एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप संपूर्ण प्योर है, वहां अपवित्रता कहां से। तो हमारा अगर संघर्ष है अपवित्रता के साथ, तो हम अपवित्रता नाम का एक वस्तु क्रिएट कर रहे, एक व्यक्ति को क्रिएट कर रहे और फिर उसके साथ लड़ रहे हैं। कभी वो शक्तिशाली होता है तो कभी हम, कभी हमारी हार होती है तो कभी उसकी हार। पर हमारा जो स्वरूप है वो संपूर्ण ब्रह्मचर्य, फिर अब्रह्मचर्य वहां है नहीं। हमारा स्वरूप है प्रेम, संपूर्ण आज का स्लोगन भी ऐसे ही कुछ है, प्रेम के सागर बन जाओ तो क्रोध वहां आ नहीं सकता है। पर अगर हम ये सोचे कि क्रोध से मेरी युद्ध है, क्रोध से मुझे मुक्त होना है, तो हम अस्तित्व क्रिएट कर रहे हैं। भावार्थ तो एक ही है, शब्द अलग अलग है, खाली शब्दों का खेल,
ये गुड़िया का खेल हो
बोलो किसे बोला बाबा ने। पर मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, आत्मा का स्वरूप संपूर्ण प्रेम, क्योंकि आत्मा का स्वरूप यदि क्रोध होता तो वो 24 घंटे क्रोध में रहने का भी उसको अभ्यास होना चाहिए। पर कोई 24 घंटा क्रोध में रह सकता एकदम गुस्से में प्रयत्न कर कि मुझे 24 घंटा गुस्सा करना है? कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी का अर्थ वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो बाबा कह रहे निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी, कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। ये बंधन क्या है? बंधन कौन, बंधक कौन बन रहा है और निर्बंधन कौन हो रहा है? आत्मा ही है। हम स्वयं ही एक जाल को, हमारे बंधन किसने बनाए? किसी और ने? कौन बना रहा है बंधन और कौन उसमें फंस रहा है? हमारे मन में जो कुछ चल रहा है और जिसके वजह से हमको लगता है हम उसमें फंस रहे हैं, वो बनाए किसने? किसी और ने बनाए। हमको लगता है हमारी इसके साथ मित्रता है और ये व्यक्ति ने हमें बहुत दुखी कर रखा है, ये बंधन बनाया किसने? उसने बनाया, हमने ही बनना बंधन बनाया है पूरा, खुद बंधन बनाया और खुद उसमें फंसे है और खुद चिल्ला रहे कि इस बंधन से छुड़ाओ, क्या करूं इस बंधन का, इन विकारों से छुड़ाओ। ये विकार किसने तैयार किए? ये विकार भी बंधन ही है, उसी में हमने ही बनाकर, हम ही फंसकर और हम ही दुखी है कि इससे छुड़ा। छुड़ाएगा भी कौन और छूटेगा भी कौन? वो स्वयं आत्मा ही छूटी। तो देहाभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर। एक है कर्म बंधन, एक है कर्म संबंध। कर्म तो करने हैं परंतु केवल निमित्त मात्र, जैसे स्तन में हो और किया और बाहर, तो यह है कर्म संबंध। एक है कर्म करते हुए उसमें आसक्त हो जाना, वो समझ लेना ये मैं कर रहा हूं। अगर फिर मैं कर रहा हूं तो उसके फिर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। फिर अच्छा कर्तापन का यहाँ भाव है। क्या बाबा को कोई कर्म बंधन है? वो आ रहा है, किसी को टोली दी किसी को नहीं दिया, अभी बताओ। किसी को लगा बाबा ने सुख दिया, किसी को लगा बाबा ने हमको दिखाई नहीं, उसके हिसाब किताब बन रहे थे। किसी को लगा ये इनको ही क्यों मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता? क्या बाबा के कर्म हिसाब किताब? हम किसी को सुख देते हैं, मैंने इनकी मदद की, उन्होंने मेरी मदद की, तो हिसाब किताब बन रहा है। वो आता है, वो भी आत्माओं को किसी को मदद कर दिया, तो उसका हिसाब किताब क्यों नहीं बनता? बहुत ही चिंतन का विषय है कि उसके हिसाब किताब क्यों नहीं बनते माता जी? वो आता है, किसी को उसने टोली दे दी, तो उसको सामने वाले को खुशी हुई, खुशी मिली, तो हिसाब बन गया ना। कोई आ रहा था हाथ बढ़ा दिया पर उसको दिया नहीं, उसको वैसे ही भेज दिया, तो फिर उसको लगेगा मुझे नहीं दिया, तो अभी तो फिर
साक्षी
भगवान की हिसाब किताब बंद रहे या नहीं बंद रहे,
कहीं पर तो बाबा बुला के देते
हैं फिर
भाई जन्म में भगवान को उन्होंने बहुत मदद किया।
हाँ मतलब ऐसा भगवान के है वही तो पूछ रहा हूँ कि भगवान को जिन्होंने मदद किया भगवान उनकी मदद करेगा ऐसे, मतलब उसका भी है हिसाब किताब।
बाबा कभी भी रखता नहीं, आप एक प्यार करेंगे मैं 10 प्यार
वो देगा, मतलब वही पूछ रहा हूँ ना, मतलब उसके भी हिसाब किताब है।
हिसाब किताब बनाया
फिर आपने बोला अब एक दो तो हो जाए,
ड्रामा में जिसे मुंडे वो कुछ नहीं करता है,
वो कुछ कर रहा है क्या? उसको भक्ति में अकर्ता कहा जाता है। कल भी बाबा ने कहा मैं अभोक्ता हूँ, कल बोला ना मैं अभोक्ता हूँ, मैं थोड़ी खाता हूँ, ये ब्रह्मा खाता है। वो भिलनी का उदाहरण दिया ना, शबरी का उदाहरण दिया ना, कल मैं तो अभोक्ता हूँ। भगवान अभोक्ता है, वो अकर्ता है, वो कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा है, ये उसके लिए गायन है। हमको वो उस तन में होते हुए भी जैसे उस तन में वो नहीं है, वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, वो कर्म तो कर रहा है परंतु कर्म के लेपित से परे है, उसको कोई कर्म टच नहीं करता है, वो साक्षी है इस ड्रामा का, डिटैच्ड ऑब्जर्वर है इस, ये जो कुछ खेल चल रहा है उसको तमाशबीन की तरह देख रहा है बस, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, ये उसमें खासियत है। उसका एक तरफ संपूर्ण प्रेम स्वरूप ही है तो दूसरी तरफ संपूर्ण अनासक्त है, एक अद्भुत अद्वितीय अनूठा एक कॉम्बिनेशन है ये उसमें, कि वो एक तरफ तो इतना डिटैच है कि उसने किसी से कुछ लेना देना नहीं है उसको, कि उसके नाम पर इतने कुछ किया लोगों ने, वो जो कहता है सर्वव्यापी कह दिया गीता में उसको, उसका नाम डाल दिया और जो कुछ किया उसके नाम पर इतने धर्म बने, वो सब किस लिए थे? उसके लिए थे ना, भगवान ये है वो है वो है, ऐसे ऐसे कितने लोग, पर उसने कभी बोला नहीं एक वर्ड। वो उतना अनासक्त भी है और यहाँ आकर भी अनासक्त है, वो आता है और बीच में से कभी भी जा सकता है, उसको ऐसी भी इच्छा नहीं कि और थोड़ा देर रुक जाओ। संपूर्ण अनासक्त और संपूर्ण प्रेम, इतना अनासक्त होने के बाद में जब आता है तो उसमें ऐसा भी नहीं कि वो बोलेगा मैं तो रह नहीं सकता, मुझे सुना सुना लगता है, मैं देखे बिना नहीं रह सकता है, बाप को भी मोह है, बाप का भी बच्चों में शुद्ध मोह है। एक तरफ उसका ये संपूर्ण प्रेम स्वरूप है और दूसरा उसकी तरफ संपूर्ण अनासक्त, उसका अनासक्त स्वरूप भी उतना ही सत्य है जितना उसका प्रेम स्वरूप, उसमें भी उतनी ही वास्तविकता है कि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। उदासीन अवदासीन गीता में वर्णन है, उदासीन उदासीन है, उदासीन अर्थात अनासक्त, किसी से एब्सोल्युटली डिटैच्ड, एब्सोल्युटली न्यूट्रल, कोई कर्म बंधन नहीं है। आत्माओं को जो आत्माओं को भास हो रहा है ये केवल हमको दिया हमको नहीं दिया, हमको मिला हमको नहीं मिला, परंतु वो तो अपनी इसमें स्थित है अपने स्वरूप में, इसके लिए वो उसको कोई लेक्षेप नहीं लगता है। वो किसी तो उसने रखा ना एक को, उसने रखा ना ब्रह्मा को रखा ना भगवान क्या है, ये 5000 साल एक मिस्ट्री रहती है, एक रहस्य रह जाता है, और जो वो अंत में आता है बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन होता है, परंतु फिर भी कुछ रहस्य रहस्य ही रहेंगे, यही इस ड्रामा की शोभा है। ये वाक्य बहुत सुंदर है कि इस ड्रामा में कुछ रहस्य अंत तक रहस्य ही रहेंगे, वो बताऊंगा तो बोला है फिर भी कुछ रहस्य वो ऐसे रहेंगे कि 5000 साल तक, जैसे 5000 साल तक गॉड भगवान एक मिस्ट्री ही रही है, क्या है ये? कई लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, कई नास्तिक बने, कोई आस्तिक बने, कोई अज्ञेयवादी एक शब्द है, आस्तिक भी नहीं नास्तिक नहीं, एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी, ये भी नहीं वो भी नहीं, न्यूट्रल, ऐसे भी कुछ है, इतने उसके तर्क वितर्क है भगवान के बारे में, वो क्या है, और वो आता है अपना सब कुछ परिचय देता है, फिर भी हम उसे जान नहीं पाते,
पूरा समझ नहीं पाए,
पूरा कहाँ समझ पाए उसको, अब तक कितने सालों से आया है वो अब समझ नहीं देता या हम असमर्थ है उसको समझने में, क्या है वो, उसका क्या अस्तित्व है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, गॉड है क्या, उसका माइंड क्या कैसे काम करता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी भावना है क्या, हम उसका खाली एक तरफ तरफा जानते हैं पॉजिटिव साइड, पर साकार मूल्यों में देखे तो उसके बहुमुखी व्यक्तित्व है उसका, कभी क्या बोल रहा है कभी क्या बोल रहा है। अव्यक्त में भी फिर भी वो प्रेम स्वरूप ही है निरंतर, अव्यक्त वाणियों में निरंतर प्रेम स्वरूप है वो हमेशा ही। या फिर बहुत स्ट्रिक्ट है पवित्रता के बारे में, पर साकार मुरलियों को देखो तो कितना उसमें उसके शब्दों में कितनी अलग अलग वैरायटी है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो। क्या हमने उसे जाना है? जैसे सूरज भाई उस दिन कहते ना, जिसको जानना है उसके साथ रहना पड़ेगा लंबा समय। हम कितना समय उसके साथ बिता रहे तो उसको जान पाएंगे, नहीं तो हम नहीं जान सकते। उत्कंठा कितनी है, कितनी हमारे अंदर अभिप्सा है कि हम उसको पहचाने कि उसका क्या स्वरूप है, क्या नेचर है, वो बोलता क्या है, करता क्या है, सोचता क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, डिजायर्स क्या है, इच्छाएं क्या है उसकी, क्या है उसके मन में, क्या आकांक्षा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, और वो जो भविष्यवाणियां कर रहा है वो क्या है, उसने बहुत सारी बातें पहले क्यों नहीं बता दी जो अभी बता रहे, पहले क्या था अभी क्या है, और फिर यही सत्य है तो ये फिर शंकर पार्टी और ये सब क्या उत्पन्न हो रहा है, ये सब है क्या इसका, यही अंतिम सत्य है तो ये कहां से आ रहा है, इनकी क्या जरूरत है, फिर यहां से कोई क्यों जा रहा है, यहां जो कुछ अभी दिख रहा है यज्ञ में वो सब सत्य है या कुछ और सत्य है, सत्य है क्या
बोल रहे थे ना वो, कोई भाई एक बार
बाबा के, बाबा को कहा मुरली में ही था ना, जयंती बहन ने मुरली में था बाबा को कहा ना किसी ने, बाबा हमको एक बार साक्षात्कार करा तो सारा माल तुम्हारा, बाबा कहते तुम्हारा माल तुम्हारे पास रखो मुझे नहीं चाहिए मैं क्या करूं तुम्हारे पैसों का बाबा को कहा, बाबा करा भी सकता है, बोलो कितना साक्षात्कार करना है, विष्णु का चाहिए कृष्ण का चाहिए, 1 करोड़ विष्णु साक्षात, 2 करोड़ माल लाओ इधर, क्या कह रहे थे कल आप, रेट लिस्ट किसका साक्षात्कार चाहिए बोलो, लक्ष्मी नारायण विष्णु कृष्ण ये रेट लिस्ट है, इधर माल उधर साक्षात्कार दोनों में अंतर है, देह का आधार लेना और देह के वश होना दोनों में अंतर है। सारा ये देह को भी समझना है और ये आत्मा को भी समझना है। आत्मा जब पुरुष तन में है तो क्या उसका स्वरूप है, और वही आत्मा जब स्त्री तन में जाती है तो उसका क्या स्वरूप है, ये क्या है ये सब। हमारे अंदर एक उत्कंठा होनी चाहिए हमेशा इसको समझने, जैसे छोटा बच्चा होता है ना हर बात में आश्चर्य होता है उसको, वो आकाश को देखता है तो उसको आश्चर्य होता है, ये क्या है, ये सूरज कहां से आया, ये चंद्रमा कहां से, ये तारे कैसे, पिताजी को पूछता है ये पानी गीला क्यों है, प्रश्न का उत्तर ही नहीं है उसके पिताजी के पास इसका ये टोमेटो है ये लाल क्यों है, ये पत्तियां ये हरी क्यों है, ये आकाश नीला क्यों है, ऐसे ऐसे प्रश्न है उसके पास ये जिसका उत्तर ही नहीं है बड़ों के पास, और वो पूछता है उसमें उत्कंठा है। और हमारे लिए ये सब प्रश्न कोई काम की नहीं, हमने देखा समुन्द्र को देख लिया बस, नौका विहार कर लिया नकी में और आगे, पर छोटा बच्चा सोचता है देखो नकी ऊपर आकाश और नीचे उसकी परछाई दिख रही है, ऊपर चंद्रमा है नीचे दिख रहा है, ये सत्य है या वो सत्य है, ये प्रश्न वो पूछता है, ये नकी सत्य है या वो ऊपर जो नकी दिख रहा है वो सत्य है, कौन सा नकी है, उसके मन में हर चीज के बारे में उत्कंठा है, हर चीज को जानने का प्रयास, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। हमारे लिए बड़ों के मन में चिंता है भविष्य का क्या करेंगे, पैसे है या नहीं है, बुढ़ापे में कौन सहारा, ये हमारे मन के हमारे प्रश्न है ये जो प्रश्न है ये हमारे, ये प्रश्न नहीं आते हमारे मन में। कभी लोग जो होते हैं ना उनमें थोड़ा इस तरह का ब्रेन ज्यादा चलता है, वो रचनात्मक होते हैं, हमारा वो रचनात्मक हो गया है, हमारा लॉजिकल है, तार्किक बुद्धि ज्यादा चलती है हमको, ये कोई नहीं। वो छोटा बच्चा देखता है तो उसको देखता है आह कितनी सुंदर पहाड़ी है, पहाड़ी जैसे आकाश के कंधों पर अपना सर रख के सो रहा है, इसको वो दिखता है, इस तरह की कल्पना करता है। बड़े जाते हैं तो वो पहाड़ी को देख लिया बस, वो देखते हुए अपनी चिंताएं चाहते हुए आगे क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या करूंगा आगे, ये सोच ही हमारा बंद हो गया है। इसी ज्ञान को एक छोटा बच्चा कैसा देखता है उस रीति से देखना है। छोटा बच्चा हर चीज में उसको कुछ ना कुछ आश्चर्य वंडर लगता है, उसको सागर में रेत में वो ढूंढता है कुछ कुछ, कोई रेत का पत्थर मिल गया तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, कितना चिकना और अच्छा पत्थर है, वो रख लेता है, जमा करता है, वो बीनता है एक एक पत्थर को, कोई बड़ा करते हुए देखा इस तरह, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब बातों में, तो दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रहेगा रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे। ये भी एक आश्चर्य है कि हर वर्ष बाबा होमवर्क देता है, रिजल्ट देखेंगे कहता है, फिर देखता नहीं, फिर होमवर्क देता है कि हाथ खड़े करो अगले सीजन में पूछेंगे, पर पूछता नहीं, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, कभी कहते ये बाद में बताऊंगा, फिर वो बताते नहीं अगली बार, और कभी कुछ बताता है कभी कुछ नहीं करता है। ये कर क्या है, ये व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति को समझो क्या है, ये जो स्पीकर है इसकी क्या है मन में। अभी भगवान थोड़ा बाजू रख दो, निराकार को बाजू रख दो, ये एक जैसे कोई व्यक्ति है, इस सम पर्सन, वो कुछ बोल रहा है, जैसे हमको हमारे सामने कोई व्यक्ति है, भाई ये व्यक्ति है इसको समझना है, तो हम पूरे जासूस लगाएंगे उसके पीछे। देखो जासूस लगाते थे ना पहले, क्या क्या करता है ये, कहाँ कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, क्या है इसके मन में। जैसे चाणक्य हमेशा एक रहस्यमय पात्र रहा है, तो जहां पर भी जाता है वहां के राजा उसके पीछे दो तीन जासूस तो जरूर लगाते हैं, ये व्यक्ति बड़ा ही रहस्यमय है, कुछ बोलता कुछ है, हर शब्द में कुछ बोलता कुछ है पर भाव कुछ है। जिस भी शहर में जाता है दो तीन जासूस उसके पीछे हमेशा रहते हैं, और उसको खुद भी पता रहता है कि मेरे पीछे जासूस है, और जिसके और उसको ये भी पता रहता है किसने जासूस लगाए, और उसको जाके बोलता भी है हमेशा कि बाकी बातें तो आपके जासूस मेरे बारे में आपको बता ही देंगे, मेरा अपना इतना परिचय पर्याप्त है कि मैं चाणक्य पुत्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अभी 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 आया हूँ तक्षशिला से, पर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके जासूस आप तक पहुंचाई देंगे। वो गुस्सा हो जाता है, हमको क्या करना है आपके पीछे जासूस लगा के, छोटा ब्राह्मण हम थोड़ी ना अपने जासूस, हमारी जो जासूस की व्यवस्था है दूध की वो तुम्हारे पीछे थोड़ी ना हम खर्च कर, पर उसको पता है मेरे पीछे लगे है। तो उसको समझना चाहते हैं हर व्यक्ति, तो हमें भी भगवान को समझना है वो है क्या। तो सबसे पहले तो उसने क्या क्या कहा वो अध्ययन करना पड़ेगा, फिर उसने क्या क्या किया, वो कैसे बिहेव करता है। भगवान जब आके, बाप दादा जब आते हैं तो सबको साक्षी होके देखते हैं ना, तो एक अभ्यास हमें कहना कि हमको उसको साक्षी होके देखना है कि वो कर क्या रहा है वहां बैठ के, ये भी एक अभ्यास है। वो बैठ के सबको साक्षी होके देखता है, हम वहीं बैठकर उसको साक्षी होके देखे कि वो वहां बैठ के क्या क्या करता है। आए बरबर कभी हाथ ही लाते हैं तो कभी दृष्टि देते रहता है लंबा समय, कभी बोलता ही नहीं, कभी बहुत बोलता है, कभी माइक हाथ में आ गया तो छोड़ता नहीं है माइक, कभी बिना माइक के भी चालू हो जाता है, कई रूप देखे उसके हमने, कभी बीच में से चला जाता है, कभी फिर आ जाता है, कभी आवाज ही बदल देता है, कभी आवाज नहीं बदलता है, क्या वो बड़ा ही रहस्यमय चरित्र है ये। शांतिधाम से
मतलब
उससे भी ऊपर जाना है, चलो वो भी एक देखो उसके ऊपर पर वो यहाँ है बीच में और हम ऐसे गोल गोल है, ये कट सेक्शन हम दिखा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ है वो प्रश्न है, फिर ऊपर नीचे का प्रश्न नहीं है। फिर शांति धाम कोई ऊपर नहीं है, धरती से जो भी चीज देखोगे वो ऊपर ही है, धरती से यहाँ कोई चीज है वो भी यहाँ के लोगों को वो ऊपर ही लगेगी, स्पेस में ऊपर नीचे आगे बाएं कुछ है ही नहीं, इधर है सारा वो उसमें का कुछ है ही नहीं। स्कूल में टीचर ने पूछा कि धरती गिरती क्यों नहीं, एक छोटी बच्ची ने हाथ खड़ा किया और बोला कि कहाँ गिरेगी, वेयर इट शैल फॉल, कितना सुंदर प्रश्न पूछा, प्रश्न का उत्तर देखो बच्ची ने कितना अच्छा, टीचर ने पूछा कि धरती गिरती क्यों नहीं, क्योंकि कोई आधार नहीं है, उसने पूछा कहाँ गिरेगी, उसका कोई स्पेस है वो, उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ है ही नहीं, और वह चिंतन का विषय है ये। इस तरह से बुद्धि को थोड़ा चिंतन का धक्का लगे ना तो फिर अच्छा रहता है, चिंतन होता रहे हमारा किसी भी ज्ञान की एक पॉइंट का, हाँ जो भी है पर चिंतन होता रहे इस रीति से। तो बाबा कहते हैं आकारी फरिश्ता और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए, इसको चेक करो, ये रिजल्ट देखेंगे बाप दादा। अच्छा, ओम शांति।